बाप दादा ने हमें जो कहा है अपने नजदीकी साथियों को एवं वायुमंडल को अब परिवर्तन करना होगा और उसके लिए हमें चाहिए बहुत पावरफुल वृत्ति। आइए आज इसी विषय पर क्लास सुनेंगे, पावरफुल वृत्ति द्वारा वायुमंडल एवं साथियों में परिवर्तन। हमारे बीच उपस्थित है मधुबन के डॉक्टर सतीश गुप्ता जी, हम सभी आपका सभा में बहुत 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 दिल से स्वागत करते हैं। आपने 1986 में बाबा का ज्ञान प्राप्त किया, 12 साल आपने ग्लोबल हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दी, आपको कई राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से नवाजा गया है, जैसे कि 2 लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स है, यूनाइटेड नेशंस द्वारा इंटरनेशनल अवार्ड फॉर एक्सलेंसी इन मेडिसिन आदि अनेक अवार्ड से आपको पुरस्कृत किया गया है, अनेक नेशनल और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में आपने अपने पेपर्स प्रेजेंट किए, अनेक सेमिनार सम्मेलनों में आप वक्ता भी रह चुके हैं, लेकिन सबसे विशेष आपकी पहचान है कैड प्रोजेक्ट, जिसको प्यारे बाप दादा दिलवाले कहते हैं। आपने 1998 से बहुत गहरी रिसर्च की, जिसमें मेडिटेशन द्वारा बिना ऑपरेशन किए हार्ट की ब्लॉकेजेस खोलने में सहायता दी जाती है। इस प्रोजेक्ट से भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति माननीय डॉक्टर अब्दुल कलाम जी भी बहुत प्रभावित रहे, स्वयं बाप दादा ने भी इस प्रोजेक्ट की बहुत सराहना की है। तो आइए हम डॉक्टर सतीश गुप्ता जी से क्लास सुनेंगे, पावरफुल वृत्ति द्वारा साथियों एवं वायुमंडल में परिवर्तन।
इस बार, इस सीजन में रादर हम कहें, जब बाबा पहली बार 24 अक्टूबर को आए थे, 24 अक्टूबर 2013 में जब आए थे, तभी से बाबा ने एक बात पर हम सभी बच्चों का ध्यान खिंचवाया कि अभी सुनने सुनाने की बजाय, अभी तक जो हम करते रहे हैं यज्ञ को 78 ईयर शुरू हो गए, शुरू मतलब 78th ईयर चल रहा है, अभी हम 78वीं शिव जयंती मनाने जा रहे हैं, तो अभी तक जो हमारा रहा है अधिकतर सुनने सुनाने की शक्ति से हम परिवर्तन करने की कोशिश करते रहे हैं। तो बाबा ने कहा कि बच्चों अभी समय प्रमाण, समय की आवश्यकता है कि अभी सुनने सुनाने से इतना परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि आत्माओं में शक्ति नहीं है, आत्माओं में हिम्मत की टांग नहीं है, हम सुनाते हैं उन पर असर कम होता है। अभी पिछली मुरली में ही बाबा ने कहा था कि हर एरिया में संदेश पहुंचाओ, घर घर में संदेश पहुंचो, कोई गली ना रह जाए, कोई छोटा गांव भी ना रह जाए, छोटे से छोटा एरिया ना रह जाए, क्योंकि बाद में क्या बोलेंगे वो लोग, हमें उलाहना देंगे कि हमारा बाप आया और आपको पता लगा, आपने हमें नहीं बताया। अभी हम सुनाते भी हैं तो लोग सुनते नहीं हैं, अभी हम जाए ना सुनाने तो लोग इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, क्योंकि उनका ध्यान अधिक दुनिया में केंद्रित है, कर्मेंद्रियों के सुख और शरीर के शारीरिक सुख में, अल्प काल के सुखों में खोए हुए हैं, या तो दुख अशांति में खोए हुए हैं या अल्प काल के सुख को ही परमानेंट सुख समझ के चल रहे हैं, और उसी में उनका मोह ममता अधिक हो चुकी है। तो बाबा ने कहा बच्चों अभी आपको पावरफुल वृत्ति के द्वारा वायुमंडल को और अपने साथियों को, अपने एरिया के भाई बहनों को परिवर्तन करने की आवश्यकता है। बाबा ने इसमें यह भी कहा कि साथ साथ जैसे आपके जो अपने घर के जो लोग हैं, आपके जहां जिस डिपार्टमेंट में आप कार्य करते हैं, उनको भी परिवर्तन करने की आवश्यकता है। चलिए अब इस टॉपिक पे हम गहराई से चिंतन करते हैं कि वो कैसे पॉसिबल है, वो किस तरह से हो सकता है। कल्प पहले भी हुआ था, इस कल्प में भी होगा, अवश्य होगा, पर हमारे मीठे बाबा ने कहा है तो अवश्य अवश्य ही होने वाला है, उसमें हम अपना भाग्य कैसे बनाएं, होने तो वाला ही है कि तो हम ऐसी विधि अपनाएं कि वो इतनी इफेक्टिव विधि हो कि जिसके द्वारा हम इसको एक्यूरेटली कर सकें, बाबा की शुभ आशाओं को पूरा कर सकें। तो हम इसी गहराई में चलेंगे, इसकी महीनता में चलेंगे, ऐसे भी कहा जाता है ना, अगर महान बनना हो तो क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, महान बनने के लिए महीनता में जाना पड़ता है, गहराई में जाना पड़ता है। तो आज हम देखेंगे कि एक तो पावरफुल वृत्ति कैसे बना सकते हैं और वायुमंडल को परिवर्तन कैसे कर सकते हैं, साथियों को परिवर्तन कैसे कर सकते हैं, इसी बात की हम गहराई में चलें। मैं एक बात यहां पर आपके ध्यान में लाना चाहूंगा कि सबसे पहला जो वायुमंडल है और सबसे पहले साथी कौन से हैं, हर आत्मा के कौन से हैं, सबसे पहला जो साथी है आत्मा का वो कौन है, हमारे मन बुद्धि और संस्कार। सबसे पहले तो उनको उनमें परिवर्तन लाना पड़ेगा ना, नहीं? हमारे जो मन बुद्धि संस्कार जो हमारे साथी हैं उनको परिवर्तन करना पड़ेगा, और जब उनको परिवर्तन करेंगे तो उसके द्वारा फिर दूसरों को परिवर्तन कर पाएंगे। मन बुद्धि संस्कार के बाद हमारे साथी कौन से हैं, हमारी कर्मेंद्रियां, आंख, नाक कान मुख हाथ पैर त्वचा, है ना, और ये शरीर भी हमारा साथी है, शरीर कर्मेंद्र शरीर के अंग भी हमारे साथी हैं, इनको भी कैसे परिवर्तन करना है। साथ साथ आज मैं इस बात पर प्रकाश डालूंगा थोड़ा सा कि कैसे इनको भी परिवर्तन, क्योंकि इस शरीर के साथ हमें फरिश्ता बनना है, इस शरीर में रहते फरिश्ता बनना है, इस शरीर में रहते हमको अशरीरी बनना है, विधेयी बनना है, इस शरीर में रहते हमको बीज रूप स्थिति कर्मातीत स्थिति को प्राप्त करना है, विक्रमाजीत कर्मातीत संपूर्ण अव्यक्त फरिश्ता बनना है इस शरीर में रहते हुए। तो इस शरीर को भी हमें कैसे अपना सहयोगी बनाना है कि हमें यह सहयोग दे, हमारा साथ दे, उसके बाद अपना लौकिक परिवार जिस परिवार में आप रहते हैं उनको कैसे परिवर्तन करें, उनमें कैसे परिवर्तन लाएं। अगर आप मधुबन में रहते हैं, शांतिवन में रहते हैं, या माउंट आबू पांडव भवन या सेंट्रो पे रहते हैं, सेंट्रो पे हम निमित हैं, टीचर्स हैं, तो हमारे सेंटर में जो रहने वाले भाई बहन है वो कैसे परिवर्तन हो, वो हमारे साथी कैसे परिवर्तन हो, उनमें परिवर्तन कैसे होगा, हमारे सेंटर का वायुमंडल कैसे बदले, हमारे घर का वायुमंडल कैसे बदले, जिस स्थान पे हम कार्य करते हैं ऑफिस में या घर या किसी भी जगह पर हम कार्य करते हैं उसका वायुमंडल कैसे बदले। हर आत्मा चाहे कैसी भी हो बाप से अपना वर्षा ले सके, अपना हक ले सके, वो कैसे हम ऐसा परिवर्तन करें, इन बातों पर थोड़ा सा हम गहराई से आज प्रकाश डालेंगे। चलिए हम चलते हैं, मैं चाहूंगा एक मिनट फिर दोबारा से हम साइलेंस में बैठ जाएं, अपने मन बुद्धि को एकाग्र कर लें इसी बात को हम गहराई से समझने के लिए, ताकि मन बुद्धि कहीं इधर उधर होगी, कहीं पे बुद्धि इधर उधर जा रही होगी तो हम समझ नहीं पाएंगे। और समझ ज्ञान माना ही समझ है ना, ज्ञान माना समझ, उस समझ को प्रयोग में लाना वही योग है ना, उस समझ को प्रैक्टिकल लाइफ में लाना योग है ना, और उस योग के द्वारा उसको अपने जीवन में हर कार्य व्यवहार में ले आना धारणा है, और उस धारणा के द्वारा फिर जीवन में कार्य करना, दूसरों को मैसेज देना सेवा है। तो ये चारों सब्जेक्ट कैसे हमारे परफेक्ट हो सकते हैं, इन्हीं बातों में गहराई से हम चलेंगे। चलिए एक मिनट साइलेंस में दोबारा बैठ जाएं, अपने मोबाइल को हो सके तो स्विच ऑफ कर दें सिर्फ 45 मिनट के लिए। चलिए शांति। तो सबसे पहले हम गहराई में जाते हैं, वृत्ति क्या है, वृत्ति को कैसे पावरफुल बना सकते हैं, इसी की महीनता में चलते हैं। आप सभी को अगर याद हो, पिछली जो सेंचुरी गई, पिछली जो सदी गई है, उसके आखिरी दिन 31/12/1999 को बाबा ने हमको मन के बारे बहुत गहराई से बताया था और वृत्ति के ऊपर भी काफी हद तक प्रकाश डाला था। बाबा ने कहा खाली मन, सोचने की शक्ति को मन नहीं कहते हैं, आत्मा की तीन शक्तियां ना, मन बुद्धि संस्कार, तो खाली सोचने की शक्ति नहीं है मन, मन के चार एस्पेक्ट्स हैं या चार डायमेंशंस हैं। पहली जो डायमेंशन है वो है स्मृति है, पहली डायमेंशन स्मृति है, यादें, मेमोरीज जिसे इंग्लिश में कहते हैं। दूसरी डायमेंशन जो है वो वृत्ति है, क्योंकि स्मृति से हमारी स्थिति बनती है। जैसी मेरी स्मृति है, अगर मेरी स्मृति है कि मैं एक ब्राह्मण आत्मा हूं, बाबा ने मुझे करोड़ों में से मुझे चुना है, मुझे ढूंढ के अपना बनाया है, मुझे विश्व परिवर्तन के निमित्त बनाया है, तो ये स्मृति जागृत हो जाना, ये स्मृति की जो फाइल अंदर है वो खुल जाना, इमर्ज हो जाना, जो कि मर्ज हो चुकी है, तो उससे हमारी स्थिति बदली है, उससे हमारे जीवन में पवित्रता आई है। ब्राह्मण शब्द का मतलब ही क्या है, ब्राह्मण माना मनुष्य, माना मन के वश में, जो मन के वश में रहते हैं वो है मनुष्य, और ब्राह्मण माना ब्राह्मणा बेहद बड़ा विशाल, और मन माना मन, अर्थात ब्राह्मण माना जिनका मन और बुद्धि विशाल है, जिनकी मन और बुद्धि सदा बेहद में रहती है। मनुष्यों की बुद्धि हमेशा हद में रहती है, अपने शरीर में, अपनी देह में, या देह के संबंधों में, या देह के स्वभाव संस्कार में, या देह के पदार्थों में रहती है, और ब्राह्मणों की बुद्धि कहां रहती है, बेहद में रहती है। बेहद क्या है, आत्मा बेहद है, शिव बाबा बेहद है, परमात्मा बेहद है, हमारा घर बेहद है, और हमारे परमात्मा से, शिव बाबा से हर एक संबंध हमारा है, बेहद संबंध है हमारे, कोई लिमिट नहीं है संबंधों की, हर संबंध, जो भी संबंध आप सोच सकते हो, वो हर संबंध हमारा बाबा के साथ है। तो ब्राह्मण माना ही बेहद में रहना, जिनकी मन और बुद्धि बेहद में है, और मन माना बाबा ने बताया था मन स्मृति, तो स्मृति में आ जाए कि मैं ब्राह्मण आत्मा हूं, मैं ब्रह्मा कुमार हूं या ब्रह्मा कुमारी हूं, इस शब्द में ही कितना राज समाया हुआ है। तो ये स्मृति जागृत हो जाना, तो स्मृति से स्थिति बनती है और स्मृति स्थिति से समर्थी आती है, मतलब वो करने की पावर आपके अंदर आ जाती है। सारे विश्व को परिवर्तन करना है, बाबा शिव बाबा ब्रह्मा के तन में अवतरण होकर के, फिर हम ब्राह्मणों को रच करके, और फिर हम हमारे द्वारा सारे विश्व को परिवर्तन करता है। अकेला परिवर्तन नहीं करता है, हम सबको साथ लेकर के परिवर्तन करता है। तो हम विश्व परिवर्तक हैं, हम विश्व परिवर्तन के निमित्त हैं। यह स्मृति जागृत होना, इसके द्वारा समृद्धि आएगी, यह स्मृति निरंतर बनी रहे हमारी, और उस स्मृति से फिर वृत्ति पैदा होती है। जैसी स्मृति फिर वैसी वृत्ति बनती है। वृत्ति माना वायुमंडल, वृत्ति से वायुमंडल बनता है। वृत्ति को इंग्लिश में कहते हैं एटीट्यूड, स्मृति को मेमोरी कहते हैं, और इंग्लिश में वृत्ति को कहते हैं एटीट्यूड। वृत्त माना जो चीज बार बार घूमती रहती है ना, जब हमारा एटीट्यूड बन गया कि नहीं मैं तो आत्मा हूं और यह भी आत्मा है, ये भी आत्मा है, ये भी आत्मा है, कोई इसको भी देखे वो आत्मा देखे, ये एटीट्यूड बन जाता है। पहले हमारा एटीट्यूड था नहीं, ये मेरा, ये मेरी बहन है, ये मेरा भाई है, ये मेरा पिताजी है, ये मेरे मां है, ये मेरे जो भी संबंध हो, ये मेरा दोस्त है, ये अच्छा है, ये बुरा है। जब हमारे देह का भान था, जब हमारी स्मृति में देह, चार बातें थी हमारी स्मृति में पहले, जब हम मनुष्य थे, कलयुग में थे, मन के वश में थे, तो हमारी स्मृति में चार बातें थी। एक तो अपनी देह स्मृति में थी, देह के संबंध स्मृति में थे, देह के स्वभाव संस्कार, देह के स्वभाव क्या है, ये पांच विकार देह का स्वभाव है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये नेचर है देह, देह की नेचर, देह समझते ये पांच विकार जागृत हो जाते हैं, और देह के संस्कार, देह का संस्कार आलस्य है, अलबेलापन है, दूसरों में दोष निकालने की आदत है, बदला लेने की भावना, शक अनुमान, चिंता करना, डर लगना, जल्दीबाजी करना, कंपटीशन कंपैरिजन करना, ये देह की आदत है, ईर्ष्या द्वेष करना, ये देह की आदत है, और देह के पदार्थ, यही हमारी स्मृति में रिकॉर्ड थे, और उसी के आधार पे हमारी जो वृत्ति थी ना वो कैसी थी, लगाव की, जो व्यक्ति जो हमारे साथ रहते हैं, जिनसे हमें काम पड़ता है, उसके प्रति लगाव पैदा हो गया था, लगाव की वृत्ति थी, देही की वृत्ति थी, झुकाव की, जो अच्छे लगते हैं वो झुकाव उनके प्रति, प्रभाव की, जिनसे हमें काम पड़ता है उनके प्रभाव में रहते थे, वो जैसा मर्जी करे उनको हांजी हांजी करते रहना, नाजिंदी करना, है ना। और चौथी चौथी जो वृत्ति थी हमारी टकराव की, जो हमें अच्छे नहीं लगते हैं, जो हमारे खिलाफ काम करते हैं, जो हमारी जो हमें गिलानी करते हैं, हमारी निंदा करते हैं, उनसे टकराव की, और इससे वृत्ति से वायुमंडल, फिर वैसा वायुमंडल हमारे आसपास बन जाता है। तो वृत्ति से वायुमंडल बनता है, तो जैसी हमारी वृत्ति होगी वैसा हमारा वायुमंडल बनेगा, सिंपल सी बात है। स्मृति से हमारी क्या बनेगी, स्थिति बनेगी, और वृत्ति से वायुमंडल बनता है। और फिर तो जब हम, और फिर वृत्ति से भावना पैदा होती है, इमोशंस, इंग्लिश में कहते हैं इमोशंस, है ना, भावनाएं पैदा होती हैं, फिर भावना से वाइब्रेशन पैदा होते हैं, और फिर भावना जब होती है किसी चीज में, जैसे मैंने बताया आपको, जब हम देह की वृत्ति थी हमारी, जब हमारा हमारी स्मृति में ये था कि मैं देह हूं, देह के संबंध, देह के स्वभाव संस्कार, देह के पदार्थ थे, तो वृत्ति हमारी कैसी थी, देही की वृत्ति थी, अर्थात किसी से लगाव की, किसी से झुकाव, टकराव और प्रभाव की वृत्ति थी। फिर भावना भी उसके प्रति ऐसी थी, जैसे हमारा लगाव झुकाव प्रभाव था उनके प्रति शुभ भावना रहती थी, उनका सब कुछ अच्छा हो जाए, वो भले गलत करते रहे तो भी अच्छे रहे, सब ठीक ठाक रहे, और टकराव जो हमारा खराब, जिनके साथ टकराव की वृत्ति थी उनके प्रति भावना कैसी होती थी, कैसी होती थी, दुर्भावना पैदा होती थी, अशुभ भावना पैदा होती थी, अशुभ कामना पैदा होती थी, नहीं, और उस भावना से वाइब्रेशन फैलते हैं। स्मृति यहां ही तक रहती है मेरे सिर में, जैसे सपोज मेरे अंदर स्मृति है कि मैं ये हूं, तो वो स्मृति मेरे अंदर, स्थिति मेरे अंदर ही रहती है, उसका असर मेरे अंदर ही रहता है, किंतु वृत्ति का असर वायुमंडल, अर्थात जो भी आपके संबंध संपर्क में आते हैं, जहां आप बैठे हैं, सपोज हम यहां इस हॉल में बैठे, तो जैसी मेरी वृत्ति है उसके अनुसार मेरे आसपास वायुमंडल क्रिएट होगा, चाहे मेरा घर है, चाहे मेरा कार्यस्थान है, चाहे मेरा सेंटर है, चाहे मेरा ऑफिस है, कोई भी स्थान है, वो उसके आसपास हमारा वायुमंडल क्रिएट होगा, जैसी हमारा एटीट्यूड होगा। अगर मेरा वृत्ति, मेरी पॉजिटिव वृत्ति है, तो मेरे आसपास पॉजिटिव वायुमंडल बन जाएगा, अगर मेरी नेगेटिव वृत्ति है तो नेगेटिव वायुमंडल बन जाएगा। जैसे भी हम एग्जाम्पल भी देते हैं ना कई बार, कि मान लीजिए कोई कार्य हम कर रहे हैं और चार पांच लोग मीटिंग कर रहे हैं कि ये कार्य तो बहुत मुश्किल हो ही नहीं सकता है, हर बार हम जितनी बार क्या फेल हुए हैं, उसमें एक आदमी आता है, उसमें एक थर्ड छठा व्यक्ति आता है, वो कहता है ये तो काम बहुत सिंपल है, मैंने हजारों बार किया है, तो बहुत सहज, ऐसी चुटकी की बात है, ऐसे हो जाता है, वो पॉजिटिव वृत्ति लेकर के आता है। तो जब तक वो नहीं आया तब तक वातावरण वायुमंडल कैसा था, नेगेटिव था, ये कार्य नहीं हो सकता। जैसे व्यक्ति आया तो क्या हुआ, वायुमंडल पॉजिटिव हो गया। जैसे आपने देखा जब बाबा आते हैं, जब बाबा की पदरामनी होती है दादी जी में, तो उस समय कैसा वायुमंडल बन जाता है, आत्मिक वायुमंडल बन जाता है, रूहानियत का वायुमंडल बन जाता है। जब दादी जानकी जी आती हैं, जब हमारी दादियां आती हैं, तो कैसा वायुमंडल बन जाता है, रूहानियत का वायुमंडल बन जाता है। ऐसा होता नहीं होता है, होता है ना। तो वृत्ति से वायुमंडल बनता है, एटीट्यूड, जैसा एटीट्यूड हम रखेंगे वैसा वायुमंडल बनेगा, और उससे फिर भावनाएं। तो वायुमंडल कहां तक बनता है, जिस स्थान पर हम बैठे होते हैं, जिस स्थान पर, सपोज ये हॉल है, डायमंड हॉल है, तो यहां पर बैठने वाले का वायुमंडल कहां तक जाएगा, डायमंड हॉल में जाएगा। और फिर उससे जो भावनाएं पैदा होंगी, शुभ भावना या शुभ कामना या दुर्भावना अशुभ भावना, उसका इफेक्ट कहां तक जाएगा? उसके उससे वाइब्रेशंस में निकलते हैं। वाइब्रेशन कहां तक जाते हैं? जहां तक जिसके प्रति वो शुभ भावना रख रहा है या शुभ कामना कर रहा है उस तक जाते हैं। चाहे व्यक्ति 50 किलोमीटर दूर हो, चाहे वो 100 किलोमीटर दूर हो, चाहे 10,000 किलोमीटर दूर हो, चाहे 50,000 किलोमीटर दूर, वहां तक भी वो वाइब्रेशन जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल अगर हम थे कि अगर कोई व्यक्ति, कोई बच्चा है, अमेरिका में रहता है और उसकी मां भारत में, दिल्ली में रहती है, तो अपनी मां को चलने से पहले फोन करता है कि मां मैं अभी निकला हूं वहां से या मैं निकल रहा हूं, तो मां का और बच्चे का आपस में क्या हो जाता है? भावना से वाइब्रेशन एक दूसरे टच होने लगते हैं। मां को बच्चे के बारे में हर समय चलता रहता है और बच्चे को मां के बारे में चलता रहता है, ऐसा होता नहीं होता है? तो वाइब्रेशंस ऐसे कार्य करते हैं, हजारों किलोमीटर दूर तक भी कार्य करते हैं। और फिर जैसी भावना होती वैसे विचार पैदा हो, संकल्प पैदा होते हैं, वो संकल्प से सृष्टि का निर्माण होता है। तो ये जो है, इसी तरह से उल्टा अगर कर दें, किसी चीज के बारे में ज्यादा सोचते रहिए, आप सोचते रहिए तो भावना पैदा हो जाएगी। जब मतलब अर्थात आपके अंदर इमोशनल चेंज आ जाएगा, और जब इमोशनल का चेंज आएगा तो धीरे उसमें उसी में मन में भावना रखते रहिए तो आपका एटीट्यूड बदल जाए, वृत्ति बदल जाएगी। ये नेगेटिव तरीका है। जब आप नेगेटिव चिंतन बार बार करते हैं, कोई बात को बार बार गलत तरह से उठाते हैं, तो आपकी नेगेटिव भावना हो जाती है और फिर नेगेटिव वृत्ति बन जाती है। अब हमें वृत्ति को कैसे परिवर्तन करें? मैं समझता हूं इससे भी पहले, या मैं वृत्ति को परिवर्तन करने के, हमें क्या दो तरीके हैं वृत्ति को परिवर्तन करने के। एक तो मैंने बताया ये तरीका, हम संकल्प के द्वारा इसी को बार बार सोचते रहे तो वो तरीका परफेक्ट नहीं है। दूसरा जो तरीका है वो सहज तरीका क्या है, जो संकल्प हमें मिले बाबा की श्रीमत पे, जो हमें संकल्प क्या मिलते हैं, हमें ये मुरली ही बाबा की श्रीमत है, तो बाबा जो हमें मुरली में संकल्प देते हैं, उन संकल्पों को जब हम कर्मों में ले आते हैं तो वो हमारी स्मृति बन जाती है, रिकॉर्ड होती है। कर्म क्या चीज है? कर्म खाली हाथ पैर से कर्म करना कर्म नहीं है, देखना भी कर्म है। सोचा यहां से, संकल्प यहां से, संकल्प माना विचार, थॉट्स, देखना उस विचार से जब हम देखते हैं, उस संकल्प से देखते हैं, तो यह भी कर्म है। सुनना भी कर्म है, बोलना भी कर्म है, खाना भी कर्म है, हाथों पैरों से कुछ काम करना भी कर्म है, किसी को छूना भी कर्म है। तो जब हम उस संकल्प के आधार पर कर्म करते हैं, जो बाबा हमें श्रेष्ठ संकल्प देता है, उस संकल्पों को हम प्रैक्टिकल कर्म में लाते हैं। आपने अगर पिछले लास्ट संडे की अगर मुरली सुनी हो तो बाबा ने कहा था कि जब संकल्प, बोल और कर्म जब तीनों समान हो जाते हैं तो निश्चय और नशा इमर्ज होता है। याद होगी अगर आपको, 3 अप्रैल 1997 की मुरली जो थी, बाबा ने कहा हम संकल्प तो बहुत अच्छे अच्छे करते हैं किंतु उसको कर्म में नहीं लाते हैं, इसलिए निश्चय और नशा, रूहानी निश्चय और रूहानी नशा इमर्ज नहीं होता, चेहरे पे नहीं आता है। अगर हम उसको कर्म में ले आए, ब्राह्मणों की विधि अलग है, ब्राह्मणों को संकल्प को पहले कर्म में लाओ उसके बाद बोलो। ज्ञान रत्नों को बाबा कहते हैं पहले धारण करो फिर दूसरों को सुनाओ। ऐसा नहीं कि हमने सुने, ज्ञान रत्न धारण किए और तुरंत दूसरों को सुना दिया, कोई फायदा नहीं, ना आपका फायदा ना तो सुनने वालों का फायदा, उनका परिवर्तन होगा ही नहीं। पहले कर्मों में लाओ, कर्म में लाएंगे तो स्मृति में रिकॉर्ड हो जाएगा। आज की मुरली में भी अगर आपको याद हो तो बाबा ने कहा, क्या कहा, अभी की प्रलब्ध क्या है, इस ज्ञान की प्रलब्ध क्या, इस बाबा की इस समय की संगयुग की प्रलब्ध क्या है, सर्व ज्ञान संपन्न, सर्व गुण संपन्न और सर्व शक्ति संपन्न। जितना अधिक हम इस प्रलब्ध को अपने जीवन में लाते जाते और उतना ही उसको फिर कर्म में लाते जाते, वो हमारे नए रिकॉर्ड होते जाते। अभी तक क्या रिकॉर्ड हुआ है हमारे अंदर, अभी तक हमारे अंदर क्या रिकॉर्ड हुआ है? 63 जन्मों से क्या रिकॉर्ड किया हमने अपने अंदर? हमने विकारों के वश संकल्प उठे, विकारों के वश संकल्प उठे और संकल्प के अनुसार हमने विक्रम किए, काम के वश, क्रोध के वश, लोभ के वश, मोह के वश, अहंकार के वश और उनके 10 जो बताए ना मैंने आपको संस्कार जो है उनके वश होकर के, आलस के वश, डर के वश, चिंता के वश, कंपटीशन के वश, कंपैरिजन करने के वश, ईर्ष्या द्वेष के वश, जो हमने कर्म किए वो विकर्म बन गए, पाप कर्म रिकॉर्ड हो गए, यही हमारे संस्कार बन गए, यही हमारी स्मृतियां हैं जिसके अनुसार हमारी वृत्ति बन गई, लगाव झुकाव टकराव और प्रभाव की, प्रभाव में आने की, उसके अनुसार हमारी भावनाएं और संकल्प पैदा होते गए। अब हमें क्या करना है? अब हमें जो बाबा श्रीमद दे रहा है उसके अनुसार हमें क्या करना है? संकल्प जो आते हैं उन संकल्पों को अभी कर्म में तुरंत लाना है। आज बाबा ने कहा और आज ही, जैसे बाबा ने कहा आज हमें मास्टर दाता और महासहयोगी बनना है, संयम युग के प्रारब्ध को ध्यान में रखना है कि मेरे को बाबा ने अभी सर्व ज्ञान दे दिया है, सर्व गुण संपन्न बना दिया है और सर्व शक्ति संपन्न, सर्व विघ्न विनाशक बना दिया है। ये जब स्मृति रख, इस संकल्प को मन में रख करके जब हम कर्म में आते हैं तो हमारी स्मृति बन जाती है, रिकॉर्ड हो गया, अर्थात मेरे संस्कार बन गए। अब इस रिकॉर्ड जो स्मृति बनी इसके आधार पर वृत्ति पैदा होगी। क्या वृत्ति पैदा होगी? हम सब आत्मा है, आत्मिक वृत्ति पैदा होगी। उस आत्मिक वृत्ति से रूहानी वायुमंडल बनेगा, चाहे हमारे घर का, चाहे सेंटर का, चाहे हमारे कार्यस्थान का या किसी भी जगह का। जैसे वायुमंडल में ना चाहते भी अगर जब बाबा आते हैं उस समय ना चाहते भी लोग अशरीरी हो जाते हैं, देह का भान भूल जाते हैं, ऐसा होता है? नहीं होता है? जब दादी जी आती हैं यहां पर शाम को, उस समय कोई अगर नॉन बीके भी बैठा हो, ज्ञान में ना चलने वाला ही बैठा हो, उसको भी क्या होता है उस वायुमंडल में, क्या उसके अंदर भी परिवर्तन उसको महसूस होता है। पहली बार मधुबन में आते हैं उनको परिवर्तन महसूस होता है, होता नहीं होता है? तो इस तरह से वायुमंडल में परिवर्तन उस व्यक्ति के अंदर भी अपने आप में परिवर्तन महसूस करता है, जबकि हमारा साथी नहीं है, वो यज्ञ में रहते नहीं है, वो पहली बार मधुबन में आए हैं तो उनके अंदर परिवर्तन महसूस होता है। मैं आपको एग्जाम्पल देकर बता रहा हूं कैसे वायुमंडल और में परिवर्तन होता है, कैसे साथियों में परिवर्तन होता है। तो हमें इस तरह से हमारी वृत्ति के द्वारा वायुमंडल परिवर्तन होगा। तो सबसे पहले तो क्या होगा, जब हम अब पहले मैंने बताया आपको कि सबसे पहले तो हमें किसको परिवर्तन करना है, सबसे पहला हमारा साथी कौन है? आत्मा की 3 सूक्ष्म शक्तियां, 3 कर्मचारी, 3 हमारे मंत्री, मन बुद्धि संस्कार, इनको परिवर्तन करना है। इसमें 63 जन्मों का कचरा फंसा हुआ है, कट चढ़ी हुई है, मन में भी बुद्धि में भी उसका असर है और संस्कार तो बने ही हुए हैं ऐसे, तो सबसे पहले तो इसको परिवर्तन करना पड़ेगा, 5 कर्मेंद्रियों को परिवर्तन करने पड़ेगा। हमने जो पिछले जन्मों में कर्म किए हैं उनको परिवर्तन, उनके जो अंगों में जो उसका इफेक्ट आ गया उसको भी परिवर्तन करना पड़ेगा। हमें ठीक करने का एम नहीं है, किंतु वो कम से कम इतने तो ठीक हो जाए कि हमें हमारी सेवा में, हमारे कार्य में बाधा ना बने। जैसे आप दादी जी को देखते हैं, शरीर के द्वारा भले कितनी भी उम्र हो किंतु फिर भी वो क्लास में आते हैं, योग कराते हैं, मुरली सुनाते हैं और क्लास भी कराते हैं, कराते नहीं कराते हैं? कितनी उम्र है दादी जी की? उम्र 98 ईयर्स, रतनमय दादी की उम्र 88 साल, कितनी उम्र के हैं? सब कुछ होते हुए कितनी, सब कुछ कितनी, फिर भी कितनी सेवा कर लेते हैं? उनका मन बुद्धि संस्कार, उनकी 5 कर्मेंद्रियां, उनका अंग उनको साथ देते हैं, सहयोगी बनते हैं। ये नहीं कहते कि मैं, हमने हमने हम नहीं कर सकते हैं। कहते हैं ऐसे? नहीं कहते ना। तो प्रैक्टिकली हमारे सामने एग्जाम्पल्स हैं, ब्रह्मा बाबा ने प्रैक्टिकल करके दिखाया और हमारी जो एडवांस पार्टी में दादियां गई, भाई बहन गए, उन्होंने करके दिखाया। अभी भी प्रेजेंट जो हमारी दादियां हैं, हमारे दादा हैं, वो करके दिखा रहे हैं सभी प्रैक्टिकल ना। तो प्रैक्टिकल हमारे सामने है, ऐसा कोई थ्योरी की क्लास नहीं है, थ्योरी की बात नहीं है। थ्योरी की बात है क्या? थ्योरी की बात नहीं है। अब वो कैसे, अब हम देखें मन का कनेक्शन। अब ये संकल्प कहां से पैदा होते हैं, क्योंकि जड़ क्या हुई, वृत्ति को परिवर्तन करने की जड़ क्या है, संकल्प। संकल्प दो तरह से पैदा होते हैं, एक तो पांच कर्मेंद्रियों के द्वारा पैदा होते हैं, दूसरा बुद्धि के द्वारा पैदा होते हैं। जब हम कुछ देखते हैं तो संकल्प पैदा होगा नहीं होगा, कोई बुरा देख लिया, कोई बुरा कर्म कोई कर रहा है, गलत बोल रहा है, या अच्छा कर रहा है तो भी संकल्प पैदा होता है। अच्छा या बुरा जो भी हो रहा होता है उसको देख के संकल्प पैदा होता है। जो हम देखते हैं, सुनते हैं तो उससे भी संकल्प पैदा होता है, बोलते हैं तो उससे भी संकल्प पैदा होता है, खाते हैं तो उससे भी संकल्प पैदा होता है, और हाथ पैरों से कुछ कर्म करते तो भी संकल्प पैदा होते हैं। तो पांचों कर्मेंद्रियों के द्वारा जो भी हम कर्म करते हैं इनके द्वारा संकल्पों की उत्पत्ति होती है, पहली बात। क्योंकि मन का कनेक्शन पांच कर्मेंद्रियों से है, पांचों कर्मेंद्रियों से डायरेक्ट कनेक्शन है, और दूसरा बुद्धि से उत्पन्न होते हैं संकल्प। बुद्धि से कैसे उत्पन्न होते हैं, बुद्धि के जैसे मन के चार एस्पेक्ट्स हैं, डायमेंशन है, ऐसे बुद्धि की भी चार डायमेंशन हैं। पहली डायमेंशन क्या है बुद्धि की, वो है दिल। ये वाला दिल नहीं, ये तो बॉडी का पंप है, ये दिल की बात नहीं है, ये तो हार्ट, हार्ट है पंप, खून पंप करने वाला, इसमें कोई रहता नहीं है। वो आत्मा का दिल, यहां जो आत्मा अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा, यहां से 2.5 इंच अंदर और यहां से 3 इंच नीचे, उसके उसमें से 7 एनर्जी निकलती रहती है, 7 गुण निकलते रहते हैं, ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद और शक्तियां। जब हम आत्माएं सत्युग में थी तो आत्मा सतो प्रधान थी, अर्थात सतो माना 7, प्रधान माना भरपूर, फुल थी, 7 गुणों में भरपूर थी। तो दिल कैसी थी हमारी, दिल कैसी थी हमारी, दिल को इंग्लिश में कॉन्शियसनेस भी कहते हैं, कॉन्शियंस भी कहते हैं, अंतरात्मा भी कहते हैं। तो दिल हमारी तब 7 गुणों से भरपूर थी, सतो प्रधान थी, उसमें सिर्फ ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद और शक्तियां भरी हुई थी। तो फिर जो दिल से, इस दिल में जितनी जितनी ये भरा है, ज्ञान भरा हुआ है, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख भरा, आनंद भरा हुआ है, उसके आधार पे फिर हमारा विवेक बनता है। दूसरा जो एस्पेक्ट है, डायमेंशन है बुद्धि की, वो है विवेक। विवेक माना परखने की शक्ति, इंग्लिश में कहते हैं विजडम, विवेक, परखने की शक्ति को विवेक कहते हैं। तो जब 7 गुण भरपूर थे तो फिर हमारा विवेक कैसा था, ईश्वरीय विवेक था, परमात्मा जैसा विवेक था, ईश्वर जैसा विवेक था। तुरंत परख लेते थे, एक सेकंड से भी कम समय में परख लिया, राइट क्या है, रॉन्ग क्या है। और फिर बुद्धि, बुद्धि माना निर्णय करने की शक्ति। तीसरा जो एस्पेक्ट है, डायमेंशन है, वो बुद्धि है, बुद्धि की, बुद्धि प्रॉपर कहें, वो निर्णय शक्ति। हम तुरंत निर्णय कर, एक सेकंड से भी कम समय में निर्णय कर लेते थे, और वो मेमोरी में चली जाती थी बात। कोई हमारे सामने कोई बात आई, दिल में गई, दिल कहते दिल को लग गई बात, दिल में तीर लग गया, इस दिल को नहीं, इस दिल में तीर लग गया, दिल को लगी, विवेक ने परखा, बुद्धि ने निर्णय किया, वो तुरंत रिकॉर्ड हो गया, मेमोरी में चला गया, स्मृति में चला गया, अर्थात संस्कार बन गया, सत्व प्रधान संस्कार बन गया। ये सत्ययुग में हमारे साथ होता था। और फिर क्या हुआ, और चित्त उस समय, उसके चौथा जो एस्पेक्ट है बुद्धि का, वो है क्या है, वो है चित्त, है सबकॉन्शियस माइंड, है वो बुद्धि का, सबकॉन्शियस माइंड बुद्धि का पार्ट है। फिर जो है उस समय जब था, जब सत्ययुग में था, तो हमारा कैसी हालत थी, क्योंकि विवेक ईश्वरीय था, बुद्धि दिव्य थी, डिवाइन थी, इसलिए चित्त हमारा शांत और एकाग्र था, दिल में आनंद भरा हुआ था। 7 गुणों का जो 6 जो पहले गुण है, ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, इनका सारा सार क्या है, आनंद है। तो दिल में आनंद, 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 आनंद से भरपूर था, इसलिए सत्य देवी देवताओं के चेहरे कैसे हैं, अतिंद्रिय सुख में भरे हुए दिखाई देते, आनंद से भरपूर दिखाई देते हैं। आंखें देखो, चेहरा देखो, चलन देखो, उनकी कर्म देखो, आनंद में इसे भरपूर है, नशा है, निश्चय और नशा दिखाई देता चेहरे पे। पूछने की आवश्यकता नहीं है, किसी भी मंदिर में जाके देवी की फोटो देखो, देवी की मूर्त देखो, पत्थर की मूर्त है उसमें भी निश्चय दिखाई देता है, आनंद दिखाई देता है, अत्यंत सुख दिखाई देता है। देवता की फोटो देखो, लक्ष्मी नारायण की फोटो देखो, राम सीता की फोटो देखो, है ना, दिखाई देता है, चित्रों में भी दिखाई देता है। तो उसमें तो हमारा जब जब हमारे दिल में सात गुण भरपूर हैं, विवेक हमारा ईश्वरीय है, बुद्धि हमारी दिव्य है, उससे हमारा चित्त हमारा कैसा है, आनंद स्वरूप है। इसलिए कहा सच्चित आनंद। जब द्वापर युग आया, जब द्वापर त्रेता खत्म होने को था, तो ये आत्मा की सातों एनर्जी लगभग नाके बराबर रह गई। और हमारी स्मृति कैसी थी उसके अनुसार, उसमें स्मृति हमारी कैसी, सतयुग में स्मृति कैसी थी, स्मृति में था मैं आत्मा हूं, पवित्र आत्मा हूं, ज्ञान पवित्रता शांति प्रेम सुख आनंद और शक्तियां थी, भरपूर थी, स्मृति में यही था। सातों गुणों की मूर्त ज्ञान मूर्त थे, बुद्धि स्मृति, वृत्ति आत्मिक थी, भावना 100% शुभ भावना शुभ कामना थी, संकल्प 100% श्रेष्ठ शुद्ध शक्तिशाली और कल्याणकारी थे। उसी के अनुसार कर्मेंद्रियां हमारी भरपूर थी, कर्मेंद्रियां कमल नयन थे, कमल मुख था, कमल करण थे, कमल नासिका थी, कमल हस्त कमल पैर थे, ये सारा शरीर कमल जैसा था, कमल माना न्यारा और प्यारा, पवित्र 100% पवित्र शुद्ध था, कंचन काया थी, मन भी कंचन था और तन भी कंचन था। काया माना दोनों चीज आती है, मन माना सूक्ष्म शरीर और बुद्धि शरीर माना ये फिजिकल बॉडी माना फिजिकल शरीर माना ये शरीर तन, तो दोनों ही काया सूक्ष्म काया और स्थूल काया दोनों ही क्या थी, कंचन सोने जैसी, सोलह कला संपूर्ण थी। जब सतयुग आया, जब त्रेता का एंड होने लगा, तो सातों गुण कम होते, बैटरी डिस्चार्ज होती गई धीरे धीरे और सातों गुण कम होते चले गए और त्रेता के अंत में आते आते 50% से कम हो गए। अब सातों गुण दिल में क्या आ गया, अभी सातों एनर्जी आधी से कम रह गई। और मन नेक्स्ट कौन था, नेक्स्ट चीफ कौन बन गया अभी, पहले आत्मा सतो आत्मा 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 का राज्य था, आत्म अभिमानी थे, फिर जब त्रेता जब द्वापर शुरू हुआ, पहला जन्म जब द्वापर का शुरू हुआ, तो उस समय क्या था कि हमारी सातों एनर्जी कम हो गई तो मन ने टेक ओवर कर लिया। आपको पता है जब कंपनी में शेयर होते हैं ना, कंपनी में जो शेयर होते हैं, जिसके 51% शेयर होते हैं वो मालिक बनता है कंपनी का। तो आत्मा के जब तक 51% शेयर थे तो क्या था, आत्मा स्वराज्य अधिकारी, स्व माने आत्मा, तो आत्मा का राज्य था मन बुद्धि संस्कार और पांचों कर्मेंद्रियों पर और हमारे आठों अंगों पर, इसलिए निरोगी काया थी, धन धान्य संपन्न थे। जब त्रेता आया सॉरी द्वापर का शुरू हुआ तो आत्मा की एनर्जी 49% हो गई, मन पे 51% हो गई, तो मन राजा बन गया। अब मन का कनेक्शन किससे था, पांचों कर्मेंद्रियों से था, तो पांचों कर्मेंद्रियों से उसने क्या लेना शुरू किया, बाहर ढूंढना शुरू किया, ज्ञान ढूंढना शुरू किया बाहर, किसका ज्ञान देखा, पांच तत्वों का ज्ञान देखा, पवित्रता ढूंढने शुरू की, नेचुरल चीजों में प्रकृति की चीजों में पवित्रता ढूंढनी शुरू कर दी, शांति ढूंढनी जंगलों में शांति ढूंढनी शुरू कर दी, प्रेम कहां ढूंढना शुरू किया, शरीरों में प्रेम ढूंढना शुरू कर दिया, सुख खाने पीने में ढूंढना शुरू कर दिया, आनंद और क्रियाओं में ढूंढना शुरू कर दिया, शक्तियां हठ योग में ढूंढनी शुरू कर दी, हठ से शक्ति पैदा करना, तो वो चीज शुरू हो गई। और इससे कारण क्या हो, अब जो है आत्मा की, जो आत्मा जो मन पहले मन को पालना आत्मा से मिलती थी, अभी मन की पालना पांचों कर्मेंद्रियों के द्वारा पांच तत्वों के द्वारा मिलने शुरू हो गई और ये अब दिल में जाने लगा, तो विवेक कंफ्यूज हो गया, बुद्धि निर्णय नहीं कर सकती, इसके कारण सबकॉन्शियस माइंड बढ़ता गया। सबकॉन्शियस माइंड में कौन सी फाइल गई, जो बुद्धि निर्णय नहीं कर पाई, करूं कि नहीं करूं, क्योंकि कहां देह आ गई, देह के संबंध, देह के स्वभाव संस्कार, देह के पदार्थ आ गए, तो उसके कारण अब बुद्धि कंफ्यूज हो गई। और अब जो फाइलें मैं जो मेमोरी जो रिकॉर्ड जो हम डिसीजन नहीं ले सके, निर्णय नहीं कर सके, वो फाइलें सबकॉन्शियस माइंड में चली गई। तो सब कॉन्शियस माइंड हमारा अशांत और चंचल हो गया, अवचेतन मन हमारा अशांत और चंचल हो गया, और जो कॉन्शियस फाइलें बहुत कम जाने लगी हम, क्योंकि निर्णय कंफ्यूज रहते थे, जिनसे मोह है वो गलत कर रहे हैं तो भी उनको हम कुछ नहीं कह रहे हैं, जिनके प्रति हमारा क्रोध है वो ठीक कर रहे हैं तो भी उनको हम गलत कह रहे हैं, जिनके प्रति हमारा लोभ है उनकी सब बात को सहन कर पा रहे हैं। तो इस तरह से हमारा लगाव झुका टकराव की वृत्ति के कारण हमारा सब कुछ कंफ्यूजन में चला गया, तो सब कॉन्शियस माइंड बढ़ता गया, धीरे धीरे आत्मा की शक्ति और कमजोर होती गई और मन पावरफुल होता गया, पांचों कर्मेंद्रियां पावरफुल होती चली गई। अब आत्मा एकदम परवश हो गई तो आदमी मनुष्य देवता से क्या बन गया, मनुष्य बन गया, और गिरते गिरते त्रेता आया, फिर कलयुग आया, कलयुग में तो एकदम तमो प्रधान हो गया, सातों एनर्जी लगभग नाक के बराबर रह गई, टोटल राज्य मन का हो गया, अभी कर्मेंद्रियों का राज्य और देह का राज्य हो गया। जरा सी बात हमारी देह में होती है बुद्धि उसमें चलती रहती है, एक फुंसी हो जाए ना पैर पे, पैर में दर्द हो सारा टाइम बुद्धि उसी में लगी रहती है, थोड़ा सा देह के पदार्थ में ऊपर नीचे हो जाए बुद्धि उसी में लगी रहती है। तो बुद्धि से विचारों की स्पीड बहुत फास्ट हो गई, बुद्धि से संकल्प बहुत तेजी से उत्पन्न होने लगे, सब कॉन्शियस माइंड से जो चीज हम नहीं कर पा रहे हैं, जो चीजें हमें अच्छी नहीं लग रही हैं, कोई व्यक्ति हमको क्रिटिसाइज कर रहा है उसको हम पचा भी नहीं पा रहे हैं, बोल भी नहीं पा रहे हैं, तो वो ही हमारे विचार चलते गए, अब उन विचारों के कारण हमारी वृत्ति कैसी हो गई, कमजोर होती चली गई, भावनाएं दुर्भावना में बदल गई, संकल्प बहुत फास्ट स्पीड हो गई। आज मनुष्यों की यही हालत है, ऐसे लोगों को हमें परिवर्तन करना, जिनकी बुद्धि में, जिनके दिल में आज देह है, देह के संबंध, देह के उनकी कॉन्शियसनेस में देह चली गई है, बॉडी कॉन्शियस हो गए, रोल कॉन्शियस हो गए, मेटेरियल कॉन्शियस हो गए, रिलीजन कॉन्शियस हो गए, उनकी कॉन्शियसनेस कॉन्शियस ही परिवर्तन हो गई, अंतरात्मा ही भी परिवर्तन आ गया, उनकी विवेक कंफ्यूज है, वो बुद्धि भ्रष्ट है, चित्त अशांत है, चंचल है, स्मृति में एबीसीडी की बजाय ज्ञान माना एबीसीडी, आत्मा बाबा कनेक्शन ड्रामा, इसकी बजाय देह देह के संबंध, देह के स्वभाव संस्कार, देह के पदार्थ ही भरे हुए हैं, वृत्ति सबकी देही खो गई है, और भावनाएं लगाव झुकाव टकराव के अनुसार भावनाएं हैं और संकल्प ऐसे चल रहे हैं, और सब मन से भी रोगी हैं, तन से भी रोगी हैं, ये हालत है आज की, चाह करके भी परिवर्तन नहीं कर पाते, लोगों को उठने की आदत नहीं है जल्दी उठने की, है ना, लोगों को देर तक जागने की आदत है, देर से सोते हैं, देर से उठते हैं, कहते हैं ना अर्ली, पहले कहावत थी अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज इज द बेस्ट वे टू बी हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, अभी क्या हो गया, अभी उल्टा हो गया, लेट सोते हैं लेट उठते हैं, खान पान के वश हो गए, जीभ के जो जीभ जो कहती वही खाना है, उसी खान पान के वश हो गए, वही चाहिए, ऐसी हमारी हालत हो गई। तो ऐसी हालत में बाबा ने अभी हमको ये जो बेहद ब्राह्मण बनाया, मनुष्य से ब्राह्मण बनाया, ब्राह्मण बना करके हमारे अंदर बेहद का जो भाव भर दिया, दिल में अभी कौन बस गया, दिल में, हमारे दिल में जब ये बात बस गई, ये ज्ञान भर जाए, एबीसीडी भर जाए, आत्मा बाबा कनेक्शन भर लो, ये ज्ञान को, इस मुरली को जितनी बार हम रिवाइज करें कम है। खाली मुरली सुनने का मतलब नहीं है, मुरली हमारे जीवन में आ जाए, उसका हम स्वरूप बन जाएं। आज बाबा ने जो कहा, हम महान महादाता बन जाएं, महासहयोगी बन जाएं, सर्व ज्ञान संपन्न, सर्व गुण संपन्न, सर्व शक्ति संपन्न कैसे बने, ये चिंतन विचार सागर मंथन चलता रहे। परसों जैसे बाबा ने कहा निर्विघ्न बनना और बनाना है, निर्विघ्न बनने का मतलब क्या है, निर्विघ्न बनाने का मतलब क्या है, निर्विघ्न का मतलब है कि कोई भी विघ्न जो हमारी साधना में आ रहा है, अभी हमारा अमृत के लिए उठने में, मुरली सुनने में, सार्वजनिक कर्म योगी बन कर्म करने में, सोने के पहले सच्चा सच्चा पोता मेल बाबा को देने में, पवित्र रहने में, शुद्ध अन्न, सत्संग और दैवी गुणों की धारणा, चार परहेज हैं, इनमें कोई भी विघ्न ना आए, हमारे चारों सब्जेक्ट ज्ञान योग धारणा सेवा में कोई विघ्न ना आए, हम सेवा हमारी हर सेकेंड हर संकल्प हर श्वास चलती रहे, उसमें कोई विघ्न ना आए, ऐसा हम बन जाएं, हमारा जितना, तो जितना हम इस तरह से हम अपने दिल में कॉन्शियसनेस में जितना हम एबीसीडी को रिवाइज और रियलाइज करते जाएंगे, बाबा को इस दिल में बसा देंगे, दिलाराम को इस दिन में बसा देंगे। दिलाराम माना कौन? ज्ञान सागर, पवित्रता का सागर, शांति का सागर, प्रेम का सागर, सुख का सागर, आनंद का सागर, शक्तियों का सागर, उसको दिलाराम में भर देंगे तो क्या होगा? फिर दोबारा से हमारी बुद्धि, हमारी विवेक ईश्वरीय हो जाएगा, बुद्धि हमारी कैसी हो जाएगी? दिव्य हो जाएगी, चित्त वापस हमारा शांत और एकाग्र हो जाएगा और हमारी स्मृति में फिर वापस एबीसीडी रिकॉर्ड हो जाएगा। यह ज्ञान हमारी बुद्धि में रिकॉर्ड हो जाए, हमारी स्मृति में रिकॉर्ड हो जाएगा, उसके अनुसार हमारी पावरफुल वृत्ति बनेगी। अभी हमारी वृत्ति कमजोर है, कमजोर थी। ब्राह्मण, जब हमें ध्यान रखें ब्राह्मण शब्द का मतलब ही अगर हमें याद रहे तो ऑटोमेटिकली हमारी वृत्ति कैसी हो जाएगी, स्मृति कैसी हो जाएगी? बेहद में चली जाएगी। बेहद माना एबीसीडी, आत्मा बाबा कनेक्शन ड्रामा। तो इसको जितना गहराई से हम दिल में भरते जाएंगे, यही सच्ची दिल है, जिस दिल में मैं अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा हूं, अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु परमात्मा की संतान हूं, मेरे सर्व संबंध उनके साथ हैं और डी फॉर ड्रामा। इस ड्रामा में हर आत्मा एक्टर है, कर्म सिद्धांत के अनुसार एक्यूरेट पार्ट बजा रही है। मेरा मीठा बाबा इसका डायरेक्टर है, कर्म सिद्धांत के अनुसार एक्यूरेट डायरेक्शन दे रहा है, इसलिए जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा, और जो होने वाला बहुत अच्छा होने वाला। उसके आधार पर पवित्रता आएगी, जितनी पवित्रता आती जाएगी उतनी शांति आती जाएगी। शांति में ना विचार कम होते जाएंगे, जितनी शांति आती जाएगी उतना रूहानी प्यार पैदा होता जाएगा। रूहानी प्यार, हम फिर एक दूसरे को आत्मा रूप में देख पाएंगे। पवित्रता आने से ही शांति आएगी, शांति से रूहानी प्यार पैदा होगा, रूहानी प्यार आने से अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होगी, और अतीन्द्रिय सुख की चरम सीमा आनंद है। उस आनंद की स्थिति में ही हम सर्वशक्तियां धारण कर सकते हैं। तो जब ऐसी सर्वशक्तियां, सर्व ज्ञान संपन्न, सर्व गुण संपन्न और सर्वशक्तियां संपन्न जब हम बन जाएंगे, दिल इससे भर जाएगा, तो ऑटोमेटिक हमारी बुद्धि कैसे हो जाएगी? पारस बुद्धि हो जाएगी, दिव्य बुद्धि बन जाएगी, और उससे फिर हमारी जो वृत्तियां पावरफुल होंगी। और ये मैं आपको बताऊं, जब हम 15 विचार करते हैं लगभग, तो हमारे, हमारा जो ऑरा कहें, आभा मंडल कहें, वो सिर्फ स्किन के लेवल तक होता है। जब हम शांति की अनुभूति में होते हैं तो उस समय 6 इंच का लगभग हमारा ऑरा होता है, आभा मंडल। और जब हम 5 पर होते हैं, नहीं, जब हम 6 पर होते हैं तो आभा मंडल हमारा 4 फुट का हो जाता है। मैं 4 फुट तक वो शांति, प्रेम, खुशी का वायुमंडल फैल जाता है। और जब हम 4 पर हो जाते हैं तो हमारा वायुमंडल 16 फुट तक हो जाता है। और जब 3 पर हो जाते हैं तो 64 को 4 से गुना करो, 256 फुट हो जाता है। 2 माना आनंद, मैं बाबा का बाबा मेरा। जब ये स्थिति में लवलीन हो जाते हैं तो हमारा वायुमंडल 1000 फुट से भी ज्यादा हो जाता है। मतलब 1000 फुट तक जो भी आत्माएं हमारे आसपास होंगी, वायुमंडल होगा, वो कैसा होगा? ज्ञान से भरपूर हो जाएगा, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद और शक्तियों से भरपूर हो जाएगा। उसमें आने वाली हर आत्मा यह अनुभव करेगी कि हां, उसको ज्यादा सुनाने की आवश्यकता नहीं है, खुद समझ जाएगी, एक शब्द भी उनके अंदर बुद्धि में आ जाएगा। ठीक है, चलिए। तो इस तरह से अपने वायुमंडल साथियों को हम परिवर्तन करेंगे, निर्विघ्न खुद भी बन जाएंगे, वो वायुमंडल जो ऑरा हमारा, हमारी खुद रक्षा करेगा, कवच के रूप में कार्य करेगा, और साथ साथ दूसरे भी जो उस वायुमंडल में अनुभव करेंगे उनके अंदर परिवर्तन हो जाएगा। ओम शांति।